हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 71। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। शब्दों का अर्थ देखिए। भगवान कहते हैं विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, कामान यानी इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको छोड़कर, या जो सर्वान यानी समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा लेश मात्र भी नहीं बचे, और पुमांस माना पुरुष, पुरुष माना कोई भी जीव या मनुष्य, चरति रहता है निस्पृह, निस्पृह का मतलब होता है इच्छा रहित, यानी इंद्रियों की सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं इंद्र तृप्ति की सारी वो त्याग देता है, और ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य जो इच्छा रहित रहता है और निर्ममो ममता रहे, किसी में आसक्ति नहीं है, निर अहंकार, और कोई उसके अंदर अहंकार नहीं है, मान की इच्छा नहीं है, सशांतिम वही पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। इस अत्यंत ही आध्यात्मिक श्लोक को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साघुशातं सह गणरघुनाथ वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। सप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। भगवान हमें अपने मन को कंट्रोल करने के तरीके बता रहे हैं कि किस तरह से स्थित प्रज्ञ कार्य करता है। जैसे पहले भगवान ने बताया या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि जो सारी इंद्र तृप्ति की भौतिक इच्छाएं हैं उनकी ओर मुनि कोई आकर्षण उसको नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है, ज्ञान उसको प्राप्त होता है कि वो यह शरीर नहीं है और शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज उसको प्रसन्नता नहीं प्रदान कर सकती है, तो फिर वो उन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। लेकिन फिर भी आगे भगवान ने कहा आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। कि जिस प्रकार समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता जो पुरुष, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त करता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। यानी कि वो सदैव क्या करता है, जितनी भी इच्छा आ रही है तो भी वो क्या कर रहा है, मन इच्छा करता है बट ही सेज नो नो नो, ये जो है वो मेरा लक्ष्य नहीं है, इसके अंदर कोई देयर इज नो प्लेजर इन दिस, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, मुझे इसमें कोई संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ज्ञान है ना, तो बताता है अपने आप को, अपने मन को समझाता है, बुद्धि से वो चीज को कंट्रोल करता है कि नहीं इससे थोड़ी ना संतुष्टि मिलने वाली है, ये तो भौतिक है, ये तो माया है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा की प्रसन्नता केवल भगवान को प्रसन्न करने में है। और ऐसे जब वो नो नो करता रहता है, ऐसी भौतिक इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं देता है बल्कि पॉजिटिव वे में लेता है, कैसे, वो खुश रहता है अपनी साधना से, अपनी भक्ति है उसकी और ज्यादा इंटेंशन, मतलब नहीं करना है उससे ज्यादा किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है कि मुझे क्या करना है, अपने आप को किस तरह बिजी रखता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में कि मुझे आज भगवान की ये सेवा करनी है, मुझे राधा रानी की वेणी बनानी है, मुझे फ्लावर का हार बनाना है, आज मुझे भगवान के कपड़ों पर इस तरह से वर्क करना है, आज मुझे भगवान की ये सेवा करनी है, तो सेवा में अपने आप को इतना बिजी रखता है, इतना इंगेज रखता है, तो या फिर मुझे भगवान के पवित्र नाम का जप करना, आज मुझे यह शास्त्र अध्ययन करना है या श्रवण करना है, तो इस तरह से जो हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है ना, तो उससे धीरे 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 क्या होता है वो डिजायर जो भौतिक है वो आहिस्ता आहिस्ता आना ही बंद कर देती है, क्योंकि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उससे या भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम के श्लोकों को सुनते हैं, वो श्रवण करना ही आपके हृदय को पवित्र कर देता है। हृदय की गंदगी क्या है, भौतिक मलिनता क्या है, ये भौतिक इच्छाएं, और जैसे जैसे हम भगवान के लिए अपना समय देते हैं, भगवान के कार्य करते हैं, भगवान की सेवा में अपना समय लगाते हैं, तो क्या होता है भौतिक गंदगी भौतिक मलिनता जो है वो हृदय से साफ हो जाती है, साफ होते 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 हृदय इतना स्वच्छ हो जाता है कि वहां पर कोई इच्छा आ ही नहीं सकती। जैसे गंदगी, अब देखें यहाँ पर घर में हमारे अगर गंदगी पड़ी होगी ना तो वहां पर मच्छर भी आएंगे, मक्खियां भी आएंगी, कॉकरोच भी आएंगे, लेकिन एक जगह बिल्कुल एकदम क्लीन है, एकदम साफ सुथरी होती है ना, तो वहां पर गंदगी नहीं होगी तो वहां पर ये मच्छर मक्खियां भी नहीं आएंगे ना। तो इसी तरह क्योंकि भौतिक इच्छाएं भरी हुई थी तो दूसरी भी उसके अंदर, अभी देखो रास्ते में भी हम देखते जहां कचरा थोड़ा पड़ा होगा ना सब लोग उधर फेंकेंगे कि भाई पहले से पड़ा, लेकिन एकदम साफ क्लीन जगह होगी उधर कोई कचरा फेंकेगा, बोलेगा नहीं यहाँ पर नहीं फेंकना मुझे कोई डर लगता है ना उधर नहीं। तो भौतिक विचारों को भौतिक इच्छाओं को उस हृदय में आने से डर लगता है जहाँ पर कृष्ण का पवित्र नाम होता है, जहाँ की जहाँ पर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होती है, तो भौतिक इच्छाएं उधर आती नहीं है। मतलब सेंसेस को कंट्रोल करना तो एक बात है, पहले तो हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इच्छाओं को त्यागना इस मच की पर है ना, ये बहुत ही उत्तम कोटि की बात है। जब हमारी इच्छा आएंगी नहीं, हमारे हृदय में इच्छा आए ही नहीं, अनुवाद देखिए भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। पहले भगवान ने क्या कहा, विहाय कामान यह सर्वान, पहले तो वो इच्छाओं का त्याग करता है कि नहीं ये भौतिक इच्छाएं मेरे मेरे ना कल्याण के लिए नहीं है। विहाय मना छोड़कर, कामान यह इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, यह जो सर्व समस्त इच्छाओं को क्या करता है छोड़ता है, फिर क्या पोमांस्य रति निस्पृह, फिर आहिस्ता आहिस्ता इच्छा आती नहीं, वो इच्छा रहित हो जाता है। देखो भगवान ने दो चीजें बताई अलग अलग, चरती का क्या मतलब है कि ये चरती चल रहा है, देखो हम जो भी श्लोक पढ़ रहे हैं मन इंद्रियां विचरण कर रही हैं, मूव हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, बट उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो डिजायर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी डिजायर आ ही नहीं रही है। ही मूव्स बट विदाउट डिजायर, वोमान चरती निस्प्रेह, उसके अंदर इच्छा आती ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि जब हम भक्ति में बहुत आगे चले जाते हैं तो हम पत्थर की तरह बेजान हो जाते हैं और कोई इच्छा रहती ही नहीं है, परंतु तो भी वो इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं करता, वो यदि कोई इच्छा करता है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब इसका क्या मतलब है, मीन्स डिजायर्स फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली डिजायरलेसनेस ना। अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता की खुशी की कृष्ण की खुशी की डिजायर हमारे हृदय में होती हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस डिजायर जो होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं, वास्तव में उसी का मतलब डिजायरलेसनेस है। रियल डिजायरलेसनेस इज डिजायर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण, वास्तविक इच्छा रहित होना क्या है कि हम इच्छा करें केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना जब हम कोई कार्य करते तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कृष्ण ने इच्छा की है कि अब देखो कहीं पर समझो प्रोग्राम हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे, हमारे इच्छा है, भले वो भक्ति का भी है लेकिन हमारी इच्छा है, हम नहीं जा पा रहे, किसी तरह से भी नहीं गए, इसका मतलब क्या है कि कृष्ण की इच्छा थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन मैं नहीं जा सकी, इसका मतलब है ये कृष्ण की इच्छा है। मतलब उसमें क्या है, संतुष्टि होगी, संतुष्टि होनी चाहिए उस भक्त को जो कि कृष्ण की इच्छा के लिए, अब मैं कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ इस तरह से, कृष्ण को मैं खुश करना चाहती हूँ इस तरह से, लेकिन कृष्ण तुमसे खुश होना चाहते हैं उस तरह से, तो हमें क्या करना है, डिजायरलेसनेस का मतलब होता है कृष्ण तुम्हारी क्या इच्छा है, मेरी इच्छा ये है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। हम क्या सोचते हैं, मैं चाहती हूँ कि आज मैं भगवान को ऐसा श्रृंगार करूं या ये ड्रेस पहनूं, लेकिन किसी तरह से वो ड्रेस कंप्लीट नहीं हो पाती है या फिर कोई वजह से भी मैं वो ड्रेस नहीं पहना सकती हूँ, भगवान की भक्ति की वो इच्छा है, लेकिन बाद में मैं भगवान को दूसरी ड्रेस पहना देती हूँ, फिर अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं पहनानी थी लेकिन भगवान वो मुझे नहीं मिल सके या फिर वो तैयार नहीं हो सके इससे, तो इसमें भगवान की इच्छा क्यों नहीं दिखती है, मतलब ऐसा क्यों नहीं देखते हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख के छोड़ दें और कोई भी ना सेवा के लिए कुछ सोचे नहीं, हमें पूरी कोशिश करनी है, सिंसियरिटी के साथ, सिंसियरियस के साथ पूरी कोशिश करनी है। अब इसका मतलब तो ये है कि बस बेड सो जाएं, सुबह रात को सो जाएं और जब अलार्म बजे नहीं बजे हम लोग सोते रहें, पूरी कोशिश करनी है ईमानदारी के साथ कि मुझे मंगल आरती पर उठना है कि किसी भी करके उसके लिए क्या करना है, रात को जल्दी सो जाना है और अलार्म भी रखनी है और किसी को बोल भी देना है कि मुझे उठाना है और सेवा करने की पूरी 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 अपनी तरफ से जी जान से कोशिश करनी है कि ये मुझे करना है, किधर प्रोग्राम में जाना है या फिर भक्ति डिवोशन डिवोटी संघ के लिए जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन वो अगर नहीं हो रहा है तो इसमें क्या देखेंगे, कृष्ण की खुशी, उसमें कृष्ण तुम इससे खुश थे तो ठीक है, इससे तुम्हें खुशी होती है तो ठीक है, इसी में मेरी खुशी है, यानी कि फिर उसकी अपनी इच्छा कृष्ण की इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं पुमान सरति निस्पृह, उसकी इच्छाएं वो इच्छा रहित रहता है, इच्छा रहित मतलब जैसी कृष्ण की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, तो फिर मेरी इच्छा तो हुई नहीं ना, फिर वो तो कृष्ण की इच्छा है, जो कृष्ण चाहता है वही करना चाहता हूँ, वही बस मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, और जो सीरियसली कृष्ण को प्रसन्न करने जाएगा ना वो जरूर उठेगा मंगल आरती पर, है ना, उसको तो पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य और कुछ है ही नहीं, इंद्रिय तृप्ति सोना खाना ये आहार निद्रा भाई मैथुन तो मैंने कब का पीछे छोड़ दिया, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जीना है, तो फिर कैसे नहीं उठेगा, फिर तो उसको उठना पड़ेगा ना, अगर उसको पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है और कोई इच्छा मेरे हृदय में है ही नहीं, तो ड्रेस कैसे कंप्लीट नहीं होगी, फिर तो होगी ना, फिर तो जरूर होगी, और कृष्ण कहते हैं यो यो याम याम तनम भक्ता श्रद्धया चितुम इच्छति, तुम्हारी अगर श्रद्धा पक्की है ना, तुम्हारा विश्वास पक्का है, यदि तुम पूरा मेरे ऊपर सरेंडर मेरे ऊपर किया है तुमने और पूरा का पूरा तुम मेरे पे मेरी शरण में हो, मेरे आश्रय में हो, तो मैं करूंगा, क्या करूंगा, योग क्षेमम वहां में हम, तुम्हारे योग क्षेम का मैं वहन करूंगा, जो तुम्हारी मतलब जो तुमने कार्य करने के लिए सोचा है उसकी अंदर जितनी भी रुकावटें हैं उनको मैं दूर करूंगा, जो चीज है उसकी रक्षा करूंगा, जो चीज नहीं है वो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन हमारा निश्चय कमजोर है। वास्तव में क्या है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कमी हमारे अंदर है, हमारी प्रार्थनाओं के अंदर है, हृदय में हमारे कोई भौतिक ऐसी कामनाएं हैं जो कृष्ण के साथ पूरा अच्छी तरीके से संबंध को निर्माण नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना, जैसे यहाँ पर लिखा ना पोमांसरति निस्प्रिहः, इच्छा रहित, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में श्री प्रभुपाद जी स्वयं बता रहे हैं कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्प्रहता है। कृष्ण भावना भावित मतलब जैसी कृष्ण की इच्छा है, वास्तव में इच्छा शून्यता यानी ये जैसे हम पढ़ रहे थे ना अभी, रियल डिजायरलेसनेस इज डिजायर फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इज डिजायर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण, तो यही इच्छा शून्यता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। क्या है मतलब संसार की किसी भी चीज में स्वामित्व हम कब कब समझते हैं, जब हम अपने आप को मिथ्या आत्मा अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। लेकिन जो अपने आप को शरीर नहीं मानता है आत्मा मानता है, तो फिर वो आत्मा तो भगवान का दास है, तो नित्य दास है, तो फिर वो तो कभी भी स्वामित्व की कोई भावना उसके अंदर होगी नहीं कि किस कुछ मेरा है, मैं तो स्वयं दास हूँ, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ कृष्ण का है, जो कुछ उसके पास है वो सब कृष्ण की सामग्री है, यही सोचता है, वो सब कृष्ण के लिए भोग्य है, वो सब कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए है, चाहे मेरा शरीर हो या मुझसे रिलेटेड शरीर या मुझसे रिलेटेड कोई भी वस्तु हो, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए भोग्य है। कृष्ण भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सब चीजों का भोगने वाला कृष्ण ही है, हर चीज कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, और मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ। जो इस ये सिद्ध अवस्था है, जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, और उसको पता चल जाता है हर चीज का स्वामी कौन है, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता। चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 8 में भगवान बताते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है, जो बुद्धिमान व्यक्ति यह बली बांटी जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं, और उसी में तत्पर रहते। भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो ये जान लेता है कि हर चीज मुझसे आई है। बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा बुधा भाव समन्विता, ऐसा भाव सिर्फ उसी के अंदर आ सकता है जिसकी बुद्धि एकदम बुद्धि संतुलित होती है। जो बुद्धिमान होता है वही समझ सकता है कि मैं समस्त कारणों का कारण हूँ, और जो बुद्धिमान होता है वही ये कार्य कर सकता है, मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करता है। तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिद्ध अवस्था क्या है, जब जीव ये जान ले कि प्रत्येक वस्तु का स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण की तुष्टि के लिए करना चाहिए। मतलब हर चीज जो है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जो कुछ भी दिखता है, पहले जैसे डिवोटी नहीं होते हैं वो कभी हम माताओं को देखते हैं, जो जो पुरुष माताओं को देखते हैं तो देख के अपने आप को प्रसन्न फील करते कि भाई हाँ इतनी सुंदर है, देखो अच्छे लोग हैं, अच्छी कितनी अच्छी लग रही है, या इस तरह के भाव आते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या भाव आता है, माताजी, ये माताजी हैं, और हर हर जीव को देख के ऐसा लगता है कि जो भी है वो इस संसार में आया है वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। उसका मेन क्या है, अगर मुझसे कोई रिलेटेड है, जैसे कोई पुरुष माता जी से संपर्क करके वो कुछ भक्ति के लिए सीख रहे हैं, तो ये देखना है हमें कि वो आत्मा है और वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना चाह रही है, उसके लिए मुझे इसको सहायता करनी। कोई पुरुष यदि हमारे संपर्क में होते हैं तो भी हमें यही सोचना है कि ये देखो ये आत्माएं हैं, और सब चीजें क्योंकि भगवान सब जीव भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही है, तो ये भी भगवान को प्रसन्न करना चाहते, मतलब फिर उसके अंदर वस्तु भाव खत्म हो जाता है उसके अंदर सिर्फ कृष्ण का, क्या कोई भी चीज भी होती है या कोई भी जीव भी होता है, कोई भी व्यक्ति भी होता है, तो क्या भाव क्या अंदर आता है कि कृष्ण को प्रसन्न करने की सामग्री है। इसलिए वो क्या चाहता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं, ये जो श्लोक है ना, पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने बताया इच्छा रहित होने का मतलब क्या है। वास्तव में इच्छा रहित होने का मतलब है कृष्ण के लिए इच्छा करना, कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना। तो अर्जुन नहीं चाहता था युद्ध करना, उसकी इच्छा ही नहीं थी बिल्कुल। वो कह रहा था ये धरती का राज्य दोगा, अगर त्रिलोकी का राज्य भी मुझे मिल जाएगा ना, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी भगवान की प्रसन्नता त्रिलोकी के राज्य से भी ऊपर है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जीव को हर कार्य करना होता है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार फिर बता रहे हैं कि वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह अभी वास्तविक इच्छा शून्यता यानी रियल डिजायरलेसनेस क्या है, इज डिजायर टू सेटिस्फेक्शन फॉर कृष्ण, कि कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा। ये प्रथम, ये वास्तविक रियल डिजायरलेसनेस इच्छा शून्यता यही है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। ये कोई कृत्रिम तरीका नहीं है कि हम अपने इच्छाओं को आने नहीं देना चाह रहे हैं, उसको देखे नहीं। विषय वस्तु जो चीज है उसको देखो, उसको देखो, उसको यूज करो कृष्ण की सेवा में। जो कोई भी है उसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना है, उसको सेवा में प्रयास लगाने का प्रयास करना है। वो चीज जो भी है इस संसार में, वो सब कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। ये सोच आ जाए ना, इसको बोलते हैं इच्छा शून्यता। मुझे दुख मिल रहा है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं जी अगर स्कूल में पढ़ रही हूँ तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मैं खा रही हूँ तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मैं सो रही हूँ तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मैं जाग रही हूँ तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मैं जी रही हूँ तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अथवा मर रही हूँ तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यदि ये माइंड में आ जाए ना, तो इसको कहते हैं इच्छा शून्यता। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। इच्छा शून्य डिजायरलेसनेस नहीं रह सकता, वो पत्थर थोड़े। इंद्रिय शून्य नहीं रह सकता, उसकी इंद्रियां हैं तो इंद्रियां कुछ ना कुछ तो करेंगी। कान है तो सुनेंगे, आंखें हैं तो देखेंगे, मुंह है तो खाएगा। इंद्रिय शून्य नहीं रह सकता। तो ये जो कृत्रिम तरीका है, मस्तूई तरीका है, जो बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई इच्छा ना, लेकिन इच्छा है कृष्ण के, कृष्ण को प्रसन्न करने की, अपने प्रेमी को प्रसन्न करने की, ऐसा पॉसिबल है। किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी, यानी इंटेंशन चेंज करनी होगी। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। वेद मंत्र लिखा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने और कहा ईशावास्यमिदं सर्वम्, कि संसार में जो कुछ भी ईशावास्यम, जो कुछ भी वास करता है, जहां पर भी है, इधर इस संसार का एक एक कण, एक एक जीव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। जो कुछ भी है वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, मैं स्वयं एक वस्तु हूँ जो कृष्ण को प्रसन्न करो, मैं भोग्य हूँ। भोक्ता कौन है? कृष्ण है। मैं भोग्य हूँ और यहाँ पर जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, जो सुंदर है, जो भोगने के योग्य है, या जो कुछ भी है, वो सब कृष्ण के लिए भोग, कृष्ण ही भोगता है, बाकी सब भोग्य है, कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। ये आत्म साक्षात्कार यानी जब जीव को पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा जो है वो कृष्ण है और सब कुछ उसी को प्रसन्न करने के लिए है। अर्थात यही सिद्धि है, ये आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, यही सिद्धि है और अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य है ना ही उनसे बढ़कर। जीव क्या है, उसकी शाश्वत, उसकी पहचान क्या है कि भगवान का अंश है, भगवान का दास है। जीव ना ही कभी भगवान के बराबर हो सकता, उनसे बढ़कर तो संभव ही नहीं है, बराबर भी नहीं हो सकता। कृष्ण तो विभू है और हम क्या है, अणु है, क्षुद्र चुंटी और एक बहुत विशाल समुद्र में, मतलब एक क्षुद्र सी बूंद में और विशाल समुद्र में कितना अंतर होता है। वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बूंद कभी समुद्र नहीं बन सकता। तो जीव चाहे कितना ही क्वालिटीज अपनी विकसित कर ले, लेकिन कृष्ण के बराबर हो नहीं सकता। तो कृष्ण का बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। जीव शाश्वत रूप से कृष्ण का दास है, शाश्वत रूप से उसको कृष्ण की इटर्नल सेवक है और उसको भगवान की सेवा करने से ही संतुष्टि मिलेगी। जीव भगवान का अंश है और जब तक उसको ये रियलाइज नहीं होता कि मैं भगवान की भोग्य हूँ, मेरे लिए कुछ भोग्य वस्तु नहीं है, मैं तो खुद भोग्य हूँ, मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ सिर्फ कृष्ण को खुश करके, बाकी इंद्रिय तृप्ति जो है उससे मुझे कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। अब यह क्या ज्ञान है, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान, ये ज्ञान कि कृष्ण ही भोग्य है, कृष्ण ही की खुशी में ही मेरी खुशी है, यह वास्तविक ज्ञान है। और जिस जब किसी जीव को यह रियलाइज हो जाता है कि कृष्ण की खुशी ही मेरी खुशी है, तो ये वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। फिर डिस्टर्बेंस कहाँ से रहेगी। अब देखो, हम जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें हमारी इच्छा अपोजिट होती है ना, कि मैं ऐसा चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मुझे दुख हो रहा। लेकिन जब हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, हम ऐसा चाहेंगे कृष्ण तुम कैसा चाहते हो ऐसा करो। फिर जब ऐसा ही हो रहा है, अब जो भी हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है, मैं अपनी तरफ से प्रयास करना नहीं छोड़ रही हूँ, लेकिन जो हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, फिर असंतुष्टि कहाँ से आई। और जहाँ संतुष्टि है वहाँ अशांति कैसे हो सकती है, संतुष्टि है तो शांति है ना। इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम है, इच्छा नहीं है ना, क्योंकि उसको ये रियलाइज हो जाता है कि कृष्ण की इच्छा ही सर्वस्व है, मेरा सर्वस्व कृष्ण की प्रसन्नता है, मैं उसके लिए जी जान से कार्य करूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसी कृष्ण की इच्छा है, लाभा लाभो जया जयो, मुझे इतना अच्छा लगता है, न जाने जिंदगी में कभी वो स्टेज आएगी जो भगवान श्री कृष्ण 2.38 में कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, दुख और सुख को इक्वल ये सोचकर कि ये कृष्ण की इच्छा है, दुख भी एकदम इक्वल है, अच्छा लगता है, तुम्हारी इच्छा है तो स्वीकार है। लाभ अलाभ, अगर लाभ हुआ है मतलब भौतिक नहीं आध्यात्मिक भी लाभ हो रहा है, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी प्रगति हो रही है अथवा नहीं हो रही है, जया जयो, जीत हो रही है हार हो रही है, किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी मुझे लग रहा है ना, मैं पूरी कोशिश अपने प्रयास को कभी भी कम नहीं करूंगी, उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ करती रहूंगी। धैर्य का मतलब यही तो है, अगर हम अपने धैर्य का दामन छोड़ दें तो फिर कहां सही जा रहे हैं। धैर्य तो यही है कि हमें धैर्य रखना है, कभी ना कभी सफलता मिलेगी, कभी ना कभी मैं कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊंगी, कभी ना कभी डिवोटी एसोसिएशन मिलेगी। अगर उसके लिए हम धैर्य नहीं रख रहे हैं तो फिर भगवान की आज्ञाओं का सही पालन कहाँ कर रहे हैं। तो जो भी है हमें क्या करना है, उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ अपना कार्य करना है, फिर उसका क्या रिजल्ट निकलता है उसमें प्रसन्न रहना है। उसका रिजल्ट रॉन्ग निकलता है, लाभ होता है हानि होती है, सुख मिलता है दुख मिलता है, और जय होता है पराजय होता है, उस सब में सुखी रहना है। ये दूसरा अध्याय जो है ना वो श्रीमद् भगवद गीता का सार है, और जो इसको समझ लेता ना तो समझो उसने सब कुछ समझ लिया। श्रीमद् भगवद गीता को संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भर के दे दिया है। और यदि इतना पढ़ने के बाद भी हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो रोना चाहिए भगवान को कि क्यों नहीं आ रहा है मुझे ये बात समझ में। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना सीखना है। पता नहीं मैं योग्य भी नहीं हूँ ये सब बताने के लिए, जो लिखा है उसको डिस्क्राइब करने की बस कोशिश की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा अच्छी तरह से कर सकूं। हरे कृष्ण।